अस्सलाम वालेकुम। ला तहज़न, दर्स नंबर 9। आज का दर्स मैंने दो लेसन्स जो हैं वो डोंट बी सैड में हैं, जो ला तहज़न किताब है उसके दो लेसन्स हैं। और बेसिकली ये एक और किताब है जिसका कोट मैं आपको भेजूंगी। उस किताब का नाम है योर सेक्रेट सेल्फ, जो डॉक्टर वेन डायर ने लिखी है, कि इंसान अपने आपको कितना डेवलप करे और कैसे डेवलप करे कि वो एक हशाश पशाश और खुश ज़िंदगी गुजार सके। तो उनका एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि स्ट्राइविंग जो है, हम सारी उम्र कोशिश करते रहते हैं लेकिन वी नेवर अराइव। समहाउ जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हम समझते हैं कि एक जो चीज़ें हमें खुश करेंगी, या तो जब हम उन चीज़ों पर अराइव करते हैं, हम पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन चीज़ों में खुशी की कोई बात नहीं होती। या जब हम स्ट्राइव तो करते रहते हैं और कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों तक कभी भी नहीं पहुंच सकते जो हमें रियली एक सच्ची खुशी दे सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान को ये पता हो कि उसकी खुशी जो है वो किस चीज़ में है, और वो हुज़न से तभी बच सकता है जब उसको अपनी खुशी के असबाब पता हों। तो हम तो मशरिकी मुआशरों में, चूँकि डॉक्टर वेन डायर जो हैं ये अमेरिकन हैं और वो एक वेस्टर्न मुआशरे में पैदा हुए थे, तो मशरिकी मुआशरों में तो मेरे ख़्याल में हम लोग और भी अपने खुशी के असबाब से दूर होते हैं, क्योंकि हम कभी ये सोचते भी नहीं हैं कि रियली मेरी खुशी किस चीज़ में है। हम और फिर ख़वातीन, ख़ास तौर पे बहनें बेटियां जो ये सुन रही हैं, हम लोग अपनी खुशी से बहुत दूर होते हैं। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आप औरों को खुश रखेंगी, औरों की खुशी का ख्याल रखेंगी, और आपने पूरे घर वालों की खुशी जो है वो आपके सर पर है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके इर्द-गिर्द जितने लोग हों वो खुश हों। तो रियली जब बचपन से लेके जवानी तक और फिर शादी के बाद, हम लोगों को ये बिल्कुल भूल जाता है कि हमारी अपनी खुशी किस चीज़ में है। अब आप में से बहुत सी बहनें या बच्चियां ये सोच रही होंगी कि ज़ाहिर है जब हम औरों को खुश रखेंगे तो हम खुद भी खुश होंगे, ये तो एक कानून कुदरत है और अल्लाह की तरफ से भी ये है कि आप औरों को, औरों में खुशियां बांटें तो अल्लाह आपको खुशियां देगा। तो ये बात नहीं है, मैं आपको किसी को खुश करने से मना नहीं कर रही हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा बल्कि मैं इस बात की एडवोकेट हूँ, और मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि सबका कैसे ख्याल रखना है और एहसान के दर्जे पे कैसे फ़ाइज़ होना है। मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम कर लूँ। तो बात ये नहीं है कि आप सबको खुश ना रखें या कैसे रखें, बात ये है कि आपने अपने आप को पहले खुश रखना है। पहले आप जब खुद खुश होंगी तभी आप किसी और को खुशी दे सकेंगी। इंसान वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास खुद ना हो। अगर मेरे पास सुकून नहीं है तो मैं आगे से सुकून नहीं दे सकती। अगर मेरे पास खुशी नहीं है तो मैं आगे खुशी नहीं दे सकती। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ये समझना है कि जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है, जब उसके ऊपर नामसाद हालात आते हैं, सख्ती आती है, यानी एक लिहाज से जब इंसान स्क्वीज़ होता है, जैसे आप लीमू को जब स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से लीमू का जूस निकलता है, या आप जब एक कपड़े को निचोड़ते हैं जो गीला होता है तो उसमें से पानी निकलता है, अगर आप सूखे कपड़े को निचोड़ते रहें तो उसमें से कभी पानी नहीं निकलेगा। तो जब स्क्वीज़ होता है इंसान और जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो उसमें से वही चीज़ निकलती है जो उसके अंदर होती है। ये एक बुज़ुर्ग का कौल है कि कोई उनको गालियां दे रहा था तो उनके शागिर्द बहुत अपसेट हुए और उन्होंने कहा कि पीरो मुर्शिद, आप इजाज़त दें कि हम जाके ऐसे दो लगाएं, इतनी गलत बातें ये कर रहा है और आपको गालियां दे रहा है। तो उन बुज़ुर्ग ने ये कहा कि इस वक्त इसके ऊपर एक मुश्किल वक्त है, और ज़ाहिर है जब किसी चीज़ को नचोड़ा जाए और जब किसी चीज़ के को ज़ोर दिया जाए तो उसमें से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। तो तुम इन हालात में अब जो करोगे उससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। अगर तुम तशद्दुद करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम एक मुतशद्दिद इंसान हो और तुम यकीनन मेरे शागिर्द बनने के काबिल नहीं हो। तो इसलिए जो इंसान के अंदर है, जो उसका अपना अंदर का जौहर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा खालिस करना है, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत करना है, ला तहज़न का मकसद भी यही है कि इंसान अंदर से एक खुशी से और एक रोशनी से भर जाए, जो एक मोमिन होने की हैसियत से उसका हक़ है, उसके दीन ने उसको ये सिखाया है, और फिर वो रोशनी और वो खुशी जो है दुनिया वालों को सबको नज़र आए और वो उसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। तो आज मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी और मैं उन सवालों पे तबसरा करूंगी, लेकिन मैं उनके जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब, अगर हम 100 लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो हमारे 100 मुख्तलिफ जवाब होंगे। तो मैं आज का जो लेसन है वो मैं आपसे आपको कोई जवाब देने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने आज आपसे 10 सवाल पूछने हैं जो मैंने ये किताब ला तहज़न और दूसरी जो है योर सीक्रेट सेल्फ, ये दोनों किताबें पढ़ के मैंने ये सवाल निकाले हैं इसमें से। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैंने आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करानी है, और जो लोग प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट कर चुके हैं मेरे साथ उनको ये पता है, या जो मेरा रोल्स एंड गोल्स के लेक्चर सुन चुके हैं उनको ये पता होगा कि मैं ये एक्सरसाइज अपने ऑडियंस से कराती हूँ, कि मैं उनको कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके 5 गहरी गहरी सांसें लें, कुछ ना सोचें, सिर्फ अपनी सांस के बारे में सोचें, जैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ऐसे करके, और सिर्फ अपनी सांस पे आप फोकस करें और 5 गहरी गहरी सांसें लें, और उसके बाद आप ये इमेजिन करें जैसे आपकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। बिल्कुल अपने जहन को आपने हर बात से खाली कर लेना है और आपने ये सोचना है कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आपके जितने प्यारे हैं, जो जिनके बारे में आप इमेजिन करती हैं कि वो उस वक्त आपके साथ होंगे, आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपके घर वाले हों, आपके बहू हों या दामाद हों, या आपके कोई नौकर हों जो हर वक्त आपके साथ होते हों, आप इमेजिन करें कि वो आपके बेड के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और आपका आखिरी वक्त है, और आप उन सब को बहुत खुशी से अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और आप कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि बस अब वक्त हो चला है, अब ये आखिरी वक्त है मेरी ज़िंदगी का, और अब इसके बाद मैंने जाके अपने खालिक से मिलना है, अपने प्यारे अल्लाह से मिलना है। और ये इमेजिन करते हुए भी आप मुसलसल गहरी सांसें लें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करें और आप इधर उधर की सोचें ना लाएं अपने जहन में, फोकस्ड रहें इस आइडिया पे कि ये आखिरी दिन है और आप लोगों को खुदा हाफिज़ कह रही हैं, और गहरी गहरी सांसें लें। अब फिर ये आप इमेजिन करें इसी एक्सरसाइज के दौरान कि अब आपकी ज़िंदगी, इस दुनिया पर जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है, और जो आपके प्यारे आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं उनका जाहिर है एक दुख का रिएक्शन है, एक ग्रीफ का रिएक्शन है, वो रो रहे हैं और वो अफसोस कर रहे हैं, एक दूसरे को शायद वो गले से लगा रहे हों, वो आपको याद कर रहे हों, आपका नाम ले रहे हों, उनके आंसू बह रहे होंगे, और आप उन सब को एक एक करके अपने जहन में लाएं और इमेजिन करें कि वो बहुत इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। अब आपने हर एक के बारे में ये पूछना है, जैसे जैसे अगर आपका बेटा है तो वो आपको याद करके कह रहा है कि ओह मेरी प्यारी अम्मी, काश, ये काश का लफ्ज़ जो है ये आपने बार बार अपने जहन में लाना है। काश करके वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आप ज़िंदगी में नहीं कर सके, जो आप कुछ करना चाहते थे अपने बेटे के लिए, कुछ करना चाहती थी आप, लेकिन आप उसको नहीं फुलफ़िल कर सकें, या आप उसको मुकम्मल नहीं कर सकें, या आपको उस वो बच्चा जो है उसको एक एहसास है कि काश मेरी अम्मी ये करती, या काश मेरी बहन ये करती, या काश मेरी सास जो है वो ये कर लेती तो आज कितना अच्छा होता, अब तो वो दुनिया में नहीं रही हैं। वो काश जो है ना, उसके बाद जो हर एक वो बात कहेगा, वो आपका बच्चा या आपका प्यारा जो भी वो कहेगा, वो आपने अपने पास लिख के रखना है, ठीक है जी। ये वो बातें हैं, ये वो ख्वाहिशात हैं जो आपके गहरे यानी कॉन्शियस लेवल पे ये बातें नहीं हैं आपकी, अब आप अपने सब कॉन्शियस में चले गए हैं, अब आप अपने जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी एक अवेयरनेस है नेचुरल, जिसमें हम जागे हुए होते हैं, अब आप उससे एक गहरे लेवल में चले गए हैं, और आप वहाँ पे जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ख़ास तौर पे जो ना तमाम ख्वाहिशात हैं और जो आपके ऐसे विशेज हैं जो आप नहीं पूरे कर सके अब इस दुनिया में, या आप समझती हैं कि आप कभी भी नहीं पूरे कर सकती हैं, वो आप खोद खोद के निकाल रही हैं, मसलन आपकी बच्ची ये कहे कि काश मामा आपने मेरे साथ वहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारा होता, या काश मामा आपने मेरे बेबी को ज़्यादा टाइम दिया होता, आप उसको बड़ा होते हुए देखती और उसके साथ शेयर करती, या आपके हस्बैंड ये कहते हैं कि काश हम फलां जगह पे गए होते और हमने वहाँ पे एक वेकेशन की होती या हमने एक छुट्टी अच्छी गुजारी होती। मसलन कोई भी ख्वाहिश है, आप इमेजिन करें कि आपके प्यारे जो हैं वो ये कह रहे हैं और आपने ये सारी ख्वाहिशात लिख के रख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये ख्वाहिशात हर किसी की इंडिविजुअल हैं, ये आपकी सब कॉन्शियस ख्वाहिशात हैं जो अक्सर आपको आपके कॉन्शियस ज़िंदगी में आपका जो शऊरी बिहेवियर जो है आपका उसमें ये आपको परेशान करती हैं आपके और आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, क्योंकि ये आपके ख्याल में ये नातमाम ख्वाहिशात हैं। जब आप ये सारी लिख चुकेंगी तो वो लिस्ट आप संभाल के अपने पास रख लें और उसे कभी कभी देखा करें और खैर महीने में उनमें से कोई एक ख्वाहिश जो है उस पर अमल भी किया करें, उसे पूरा भी किया करें, ठीक है। वो उसमें से कोई भी इम्पॉसिबल ख्वाहिश कोई भी नहीं होगी। फिर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके कितने सच्चे दोस्त हैं, और सच्चे दोस्त का एक मयार जो है जो मैंने आपके लिए रखा है वो ये है कि अगर अभी मैं आपके सिर पे पिस्तौल रख दूं और मैं आपको कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए ला के दो, और आप या आपको जो भी मतलब मसलन मैं कहूं मुझे 1 करोड़ रुपया ला के दो, तो आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको आप एक कॉल करेंगे या एक मैसेज करेंगे और वो ला के वो पैसे आपको दे देंगे। जितने भी आपके ऐसे दोस्त हैं आप उनके नाम लिख के रख लें, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत कीमती लोग हैं और इनको बहुत करीब रखें। फिर आपने एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो अगर आपको कॉल करें कि आ जाओ अफशान ने मेरे सिर पे पिस्तौल रखा हुआ है और वो मुझसे 1 करोड़ रुपया मांग रही है और जितने भी तुम अभी बैंक में से अपना निकाल के मुझे ला के दो, मेरी ज़िंदगी बचाओ, तो आप कितने लोगों की ऐसी दोस्त हैं, यानी कि कितने लोग ये समझते हैं कि आप उनकी इतनी करीबी दोस्त हैं या आप उनका इतना ध्यान रखेंगी और ख्याल रखेंगी, उन लोगों के नाम भी आप लिख के रख लें, ठीक है जी। फिर आपके पास कितने ऐसे लिबास हैं जो आपके फेवरेट कलर्स में हैं और आपके फेवरेट स्टाइल्स में हैं। अपनी अलमारी खोलें और देखें कि कितने लिबास जो हैं वो आपने फ़ैशन की वजह से बनवाए हैं कि आजकल ये फ़ैशन है, या किसी ने आपको एक गिफ्ट दिया है कोई लिबास और आपने वो सिलवा लिया कि ये तो उसने मुझे गिफ्ट दिया था, या आपने किसी को खुश करने के लिए कोई लिबास ख़रीदा हो और आपने वो बनवाया हुआ हो, या किसी ख़ास मौके के लिए जैसे किसी की शादी है या मेहंदी है और हमने इस कलर के लिबास पहनने हैं, तो उन सब में से आपने ये देखना है कि कितने लिबास आपके फेवरेट कलर के हैं और आपके फेवरेट स्टाइल के हैं, चाहे वो फ़ैशन के हों या ना हों। और आपने ये जवाब लिखना है कि इतने % लिबास जो थे वो सिर्फ मेरी पसंद के थे और मेरी मर्ज़ी के और मेरे फेवरेट कलर्स के थे। फिर आपने मुझे ये या ये जवाब अपने पास आपने सोचना है कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा कोई ऐसी चीज़ खाती हैं जो सिर्फ़ आपको अच्छी लगती है, चाहे घर वालों को अच्छी लगती हो या ना लगती हो, चाहे बच्चों को अच्छी लगती हो या ना लगती हो, लेकिन आप अपनी पसंद की एक चीज़ या तो मंगवाती हैं या बनवाती हैं या ख़ुद पकाती हैं और फिर आप उसे खाती हैं और आप यकीनन उसको खाना बहुत इंजॉय करती हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो फेवरेट चीज़ क्या है, वो है आया आपने पिछले हफ्ते में कितनी दफ़ा अपनी वो फेवरेट चीज़ खाई थी, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल ज़रा काफ़ी लोग इसमें वो जाते हैं कि आप किताबें कितनी पढ़ती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले हफ्ते में जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं या शुरू की हैं या ख़रीदी हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किताबों से कितनी दूर हैं, और ये याद रखें कि एक खुश ज़िंदगी जो है वो किताबों के बग़ैर नामुकम्मल है। तो आज ही किताबों से दोस्ती करें और बच्चों को किताबें ख़रीद के दें, ख़ुद के लिए किताबें ख़रीदें, लेकिन किताबों से दोस्ती आपने डेवलप करनी है, चाहे वो छोटी छोटी बच्चों की किताबें हों, चाहे आपको रीडिंग ना करनी आती हो, आज से आप रीडिंग सीखने का अहद करें और आप किताबों से एक दोस्ती करें। उसके बाद आपको याद है कि जब आप छोटी थी या बच्ची थी तो आपकी कोई हॉबी हुआ करती थी, जैसे हम लोग माय हॉबी पे मज़मून भी लिखते थे कॉलेज में और स्कूल में, तो आपको अपनी वो हॉबी याद है, और क्या आपने अपनी वो हॉबी कंटिन्यू रखी है, क्या आज भी आप उस मशगले में अपने आप को खुश महसूस करती हैं और उस मशगले को आप परसू करती हैं या नहीं, और अगर परसू करती हैं तो वो क्या मशगला है, और अगर परसू नहीं करती तो क्यों नहीं करती। अगर आप दोबारा से उसको परसू करना शुरू कर दें तो वो आपका कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, लेकिन आप ये देखें कि आप हफ्ते में उसको कितनी दफ़ा परसू कर सकती हैं। फिर ज़रा मुश्किल सवाल है कि वो क्या बात है जो आप कि जब ज़िंदगी का एंड आएगा, जब मौत का वक्त आएगा, तो आप उसको रिग्रेट करेंगी। मसलन ये वही एक्सरसाइज है कि आप सोचें कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आपके दिल में ऐसा क्या रिग्रेट होगा जो आप इस दुनिया में शायद होते हुए कर सकती थीं लेकिन आपने वो काम ना किया, किसी वजह से कोई अमर माने आ गया और आपने वो काम नहीं किया। वो एक काम या दो काम या तीन काम जो भी आपके रिग्रेट्स हैं वो आपने ज़रूर अपने पास लिख कर रखने हैं। फिर ये है कि कितने ज़्यादा इस वक्त ये आखिरी सवाल है कि आप आंखें बंद करके मुझे ये बताएं कि आपको जैसे ही आप आंखें बंद करती हैं आपको कितने रंग नज़र आते हैं। आपने उन रंगों की तादाद लिख लेनी है। इसका जवाब तो इंशाल्लाह मैं कल दूंगी कि कितने रंग आपको नज़र आते हैं और जो रंग नज़र आते हैं उनका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कितनी तादाद में आपको रंग नज़र आते हैं ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो आंखें बंद करके 2-3 सेकंड सिर्फ आराम से सोचें और जितने रंग आपको नज़र आते हैं उनके नाम लिख लें। ठीक है जी, आज का इतना ही सबक था, और आज का सबक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हमारे इस ला तहज़न में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ही आगे पहुंच गए हैं इसमें। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो 90 दिन का एक सीरीज़ है और हम लोग जो हैं तो 9वें-10वें दर्स पे, शायद 9वें या 10वें-8वें लेसन पे पहुंचे हुए, 9वें लेसन पे हम पहुंचे हुए हैं। तो मज़ीद आपके जो है मेरे साथ 10 लेसन रह गए हैं जो मेरे ख्याल में अब हम अल्टरनेट डे करेंगे। एक दिन कोई एक्सरसाइज होगी और फिर उसके अगले दिन लेसन होगा, 10वें लेसन से ऐसा शुरू हो जाएगा। तो आज जो एक्सरसाइज की है हमने, इसके जवाब आपने अपने पास लिख के रखने हैं, और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात भी करेंगे और इंटरप्रिटेशंस भी बताएंगे। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान वाला और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला खुशबाश इंसान बना दे। आमीन सुम आमीन।